नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ षष्ठ स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 25। ते च पित्रा समादिष्ठः प्रजा सर्गे धृतव्रतः नारायण सरो जग्मो यत्र सिद्धः स्वपूर्वजः। शब्दार्थ ते ये पुत्र सबलास्व च तथा पित्रा अपने पिता द्वारा समादिष्टः आदेश दिए गए प्रजा सर्गे जनसंख्या बढ़ाने में धृतव्रताः व्रत स्वीकार किया। नारायण सर नारायण नामक पवित्र झील में जग्मो गए यत्र जहां सिद्धाः पूरा किया स्वपूर्वजाः उनके बड़े भाइयों। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का। आगे जागा है आप आ सकते हैं, कम फॉरवर्ड स्पेस है, आगे आगे आ सकते हैं, पीछे जो आते हैं पीछे भले बैठ सकते हैं। अनुवाद संतान उत्पन्न करने की अपने पिता के आदेश अनुसार पुत्रों की यह दूसरी टोली भी नारायण सर नामक उस स्थान पर गए जहां उनके भाइयों ने इसके पूर्व नारद के आदेशों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। तपस्या का महान व्रत लेकर सवलास्व उस पवित्र स्थान पर रहने लगे। तात्पर्य प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरे टोली को उसी स्थान पर भेजा जहां उनके पहले पुत्रों ने सिद्धि प्राप्त की थी। अपने पुत्रों की दूसरे टोली को उसी स्थान पर भेजने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाए। यद्यपि ये भी नारद के उपदेश के शिकार हो सकते थे, वैदिक संस्कृति के अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मचारी के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यह वैदिक प्रणाली है। अतः प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरी टोली को सांस्कृतिक प्रगति के लिए भेजा। यद्यपि वहाँ यह खतरा था कि नारद के उपदेश से वे अपने बड़े भाइयों की तरह कहीं बुद्धिमान न बन जाएं, कर्तव्यनिष्ठ पिता के रूप में उन्होंने अपने पुत्रों को जीवन की पूर्णता विषयक सांस्कृतिक उपदेश प्राप्त करने के लिए अनुमति देने में हिचकिचाहट नहीं की। वे उन पर निर्भर रहे कि वे भगवतधाम वापस जाना चाहते हैं या भौतिक जगत में इसी विभिन्न जोनियों में सड़ना चाहते हैं। सभी परिस्थितियों में पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को सांस्कृतिक शिक्षा दे और बाद में जो यह निश्चय करें कि वे किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। जमींदार पिताओं को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सानिध्य में सांस्कृतिक उन्नति करने दें, न रोकें। यह पिता का कर्तव्य नहीं होता। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दे कि वे गुरु के उपदेश का पालन करते हुए आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाने पर अपने मन के अनुसार चुनाव करें। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये भागवत का ये प्रसंग विशेष करके हमारे संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके आज जितने सब छात्रगण उपस्थित हैं उनके लिए बहुत ही जानकारी के विषय वस्तु है, क्योंकि आपके तरह ही ऐसी घटना ये कोई इस्कन बनने के बाद नहीं, ये हजारों करोड़ों साल पहले जब दक्ष प्रजापति जो प्रजापतियों के दक्ष थे, प्रजा उत्पन्न में दक्ष थे, उस जमाने में भी इस प्रकार था कि उन्होंने भगवत आदेश से प्रजा उत्पन्न किए। पहले ब्याज में 10,000 लड़के पैदा किए थे और उनको आगे प्रजा उत्पन्न करने के लिए उपदेश दिए। तो यहाँ बताया जाता है और देखा भी जाता है, जिन्होंने गृहस्थ बनना चाहते हैं तो उनको गृहस्थ बनने से पहले तपस्या करना पड़ता है। बिना तपस्या से गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना ये वैदिक रीति नहीं है। ये आश्रम के लिए भी तप आचरण करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने कहते हैं दे शुड बी गेट प्रॉपरली ट्रेंड अप, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होना चाहिए उनका, बाद में गृहस्थ बने। तो ये तपस्या उठाना बहुत आवश्यकता है गृहस्थ आश्रम जाने के लिए। आजकल जो कुछ तपस्या तो करते हैं ढूंढने में, जो नहीं तपस्या करते हैं बाद में तपस्या करना पड़ता है उनको, हाँ भारी तपस्या होता है उनके लिए। तो लेकिन ये ऐसे पवित्र स्थान में जा करके बाकायदा तप करना ये बहुत जरूरी था गृहस्थ आश्रम जाने के लिए। तो ये दक्ष प्रजापति जो ये बात को भली भांति जानते थे, अपने पुत्रों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ये तप आचरण करके अपने को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए उनको भेजे। उन्होंने पिता का आदेश पालन करके ये भारत के पश्चिम दिशा पर जहाँ सिंधु नदी और समुद्र का संगम है, नारायण सरोवर, बड़े पवित्र सरोवर है, बड़े बड़े सिद्ध मुनि यहाँ रहा करते थे। आज भी वो क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध है, नारायण सर कच्छ के आगे है। तो वहाँ जा करके जब उनने नारायण सर में स्नान किए तो विशुद्ध जल में स्नान करने के बाद उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो गया, भगवानमय हो गया। शुद्धता के मतलब मन भगवान में लगे, और कितने भी सेंट साबुन लगाओ मन भगवान में न लगे, विषय में लगे वो अशुद्ध ही अशुद्ध है, शुद्धता उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ शुद्धता इसलिए माना गया क्योंकि वहाँ स्नान करने मात्र ही मन भगवान में लगा, इसलिए परम अशुद्ध माने गए। और नारद जी जो भक्ति के प्रचार में अति दक्ष हैं, जैसे प्रजा उत्पन्न में दक्ष थे वो भी भक्ति के प्रचार में दक्ष थे। वो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले थे, भाई जिनको सुजोग में चाह में रहते हैं, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जो लोहे को बेंड करना हो उनके गर्म अवस्था में उसको चोट मारना चाहिए, ठंडी में मारो तो आपका हाथ बेंड हो जाएगा, वो कहा को बेंड होगा। तो इसलिए जो समय में प्रीचिंग करना चाहिए, जहां को जहां पर जिसको ओ इसमें बिल्कुल एक्सपर्टिस था उनका, तो उन्होंने राइट इन द प्लेस पहुंच गए, बोले ये बिल्कुल सेट बराबर है, 10,000 एक चकाचक सेट है, होलसेल में मारेगा। तो पहुंच गए, उनको जाकर 10 अमूल्य सिखा दिए, ऐसे 10 बातें उनको बताए, कूट बात। पता नहीं, मैं सोच रहा था, केवल नारद जी नहीं, जितने बड़े बड़े उपदेष्टा ज्ञानी है और जो समझदार व्यक्ति को सीधा सीधा बात कभी नहीं कहते, भगवान इसलिए टेढ़े ही है, वो सीधा नहीं, परोक्ष वेद परोक्ष भाव, वेद में जो ज्ञान है सो परोक्ष ज्ञान देते हैं, सीधा प्रत्यक्ष नहीं देते हैं, इनडायरेक्टली देते हैं। और जो बुद्धिमान है समझदार वो समझ सकते हैं, वो उनको बुद्धि लगाकर समझने में उनको लगता है कि हाँ ये बात, तो सीधा सीधा बोलो ये क्या बात है, वो उनको मजा नहीं लगेगा। तो इसलिए नारद जी उनको जानते थे, बड़े बुद्धिमान समझदार है, शुद्ध चित्त है, तो जाकर के उनको ऐसे कूट बात 10 बात बोले, तो नारद जी की बात सुनकर वो सोचने लगे, अपने बुद्धि को लगाए, बुद्धि लगाकर जब ये समझ गए ये 10 चीज का अर्थ को, तब तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना नहीं चाहे, वो सीधा ब्रह्मचारी तो थे ही, वहीं से सीधा वैराग्य जीवन लेकर चल पड़े, महावैराग्य बना दिया। घर को और गए नहीं, फोन तो था नहीं तभी जमाने में, भाई मैसेज भेज दिए थे पापा को, भाई हम नहीं जा रहे हैं करके अब देख लेना, नहीं कोई मैसेज भी नहीं भेजे, फोन तो था नहीं तब जमाने में, कुछ नहीं किए भाई चल पड़े। नारद जी खुश हो गए, बड़े सफल हुआ। तो ये बात को सुन करके प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए, जितना दुखी हुए कि घर छोड़कर गए गए, और ज्यादा दुखी हुए कि इतने अच्छे लड़के थे। श्लोक में बताया गया इस प्रसंग में कि घर में अच्छे पुत्र होना भी बड़े दुखदाई है, खराब पुत्र होना तो है ही, अच्छे पुत्र होना भी, अगर वो चले गए और भी रोएंगे, अरे यार इतने बढ़िया था, हाय हाय, हाँ नहीं तो था नहीं था, लेकिन इतने अच्छा हुआ और निकल गया, है ना। नहीं कोई भिखारी जिसमें आंकर खाता है ठीक है, लेकिन उनको कहीं 10-20 हजार रुपया मिल जाए और वो मन में कितना राजा बन जाए और चोरी हो जाए, ओ हो हो हो, पहले जितना दुखी था उसमें इतने हजार गुना ज्यादा हो। तो इसने अच्छे स्वपुत्र सुपुत्र होने के बाद भी जब निकल जाए इतने आज्ञाकारी पुत्र, तो बड़े दुखी हुए। लेकिन उन्हें इंडिया टीवी में नहीं गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी के पास गए, आजकल पिताजी से जाते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी समझाए, ब्रह्मा जी उनको समझाए, तो समझ गए, समझ बुझ कर बोले पिताजी समझा रहे हो क्या करे। तो आ करके फिर प्रयत्न किए, प्रयत्न करके दूसरी सेट में 1,000, ये हरिया से 1,600 है, ये तेज पित्रा वो भी उनको प्रोड्यूस करके 1,000 सेट उनको, बोले भैया आपको भी प्रजा उत्पन्न करना है, वही आदेश दिया उनको जो आदेश पहले पुत्रों को दिए थे, वो प्रजापति थे, प्रजा उत्पन्न को आदेश। और पिताजी के इतने ओबीडियंट बेटे वो भी थे सेकंड सेट वाले, सेकंड सेट भी इतने पिताजी के ओबीडियंट थे, उनके आदेश को पालन करने वाले थे, तो बिल्कुल हाँ जी पिताजी अब हम जा रहे हैं गृहस्थ आसन प्रवेश करने के लिए, जो तपाचरण जो तपस्या की आवश्यकता है हम जा रहे हैं तपस्या करने। और तभी ये कोई साधारण आप और हम जैसे कोई पिता होते तो उनको केयरफुल होते, भैया यहां मत जाना ये डेंजर है, यहां पहले सेट में जाकर गड़बड़ हो चुका, मैं खो चुका हूं, एक्सपीरियंस है मेरा, इस जगह पर नारद जी फिर ना पहुंच जाए, जिस जगह पर ऐसे दुर्घटना हो चुका है वहां पर कितने कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन ये प्रजापति दक्ष इस बात का उनको अच्छा तरह से जानकार था कि अगर इस दिशा पर जाए इस जगह पर हो ना हो नारद जी फिर आ करके उनका एरिया है, घूमता रहता है, तो जानबूझ करके हाई रिस्क लिए और बच्चे गए और उनको जाने दिए। प्रभुपाद ने देखते हैं कि लिखते हैं कि दक्ष प्रजापति को यद्यपि पता था लेकिन वो रिस्क उठाए, बोले जाना तो पड़ेगा, बच्चों को अगर पक्का तालीम प्राप्त देना है तो इसी जगह पर जाना पड़ेगा, ये अच्छा सबसे जगह है। तो इसलिए पिता को कभी कर्तव्यनिष्ठ पिता को ड्यूटीफुल फादर को पुत्र को योग्य बनाने में कभी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, सही जगह पर सही शिक्षा में उनको नियुक्त करना चाहिए। कहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन हो रहा है, सही व्यवस्था है, वहीं छोड़ना ये पिता का कर्तव्य होता है। जानबूझ करके पुत्र स्नेह में फंस करके ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चैतन्य लीला में देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप अब अद्विताचार्य के यहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ करके इतने समझ में आ गया, अब बहुत कम उम्र में उनने संन्यास ले लिए। वो संन्यास ले लिए तो माँ सची ने इतने दुखी हुई कि उन्होंने जो दूसरा बालक उनका था निमाई, उनको स्कूल में भेजना ही बंद कर दिया। मतलब पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये पढ़ सड़ करके ऐसे ही होते घर से निकल जाते हैं। हाँ, अगर पढ़ाए कि भाई NIT IIT में तो घर नहीं भेजना है, वही उनका कैंप लगता रहता है। तो जो भी हो, तो उन्होंने उनको विद्यालय में भेजना ही नहीं चाहा। पुत्र स्नेह के अतिरेक के कारण निमाई को नहीं भेज रहा था कि क्यों उन्हीं की तरह वो भी वैरागी ना बन जाए। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई की अवस्था में ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार किए कि माँ को अकल आ गया, नहीं तो स्कूल में भेजना पड़ेगा, नहीं तो और गड़बड़े, भेजना पड़ेगा। तो इस प्रकार वास्तविक शिक्षा विद्या देना चाहिए पुत्रों को, ये पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है, कोई अधिकार वर्ग का कर्तव्य है। भागवत में ये तक कहा गया, ऋषभदेव ने कहते हैं शिक्षा देते हुए, वो कहते हैं गुरु न शिष्यात स्वजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात दैवो न सस्यात पति न सस्यात। जो समुपेत मृत्यु से जो उनको बचाना दे, जो अपने प्रिय संबंधी को संबंधियों को भगवत भक्ति के उपदेश दे करके ये मृत्यु रूपी फांस से नहीं छुड़ा पाते हैं, उनको इन्हें गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, स्वजन नहीं बनना चाहिए, पति माता इष्टदेव और कुछ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनका उत्तरदायित्व है कि आपने ऊपर में जो निर्भर करते हैं, कोई गुरु का, कोई पति का, कोई पिता का, कोई माता का, कोई स्वजनों का, कोई इष्टदेव का, कोई बंधु बांध, उनका एक कर्तव्य होता है, जो उनके ऊपर भरोसा करते हैं उनको शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश दें, जिनके सहारे में ये जन्म मृत्यु चक्र से वो अपने को उबार सकें। अगर ये मदद नहीं कर पाए उनको, तो उनको ये अधिकार लेने का योग्यता नहीं, आवश्यकता नहीं, इसे नहीं बनना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत हाईली समर्थ माता पिता जो आपने को खूब समझदार खूब समर्थ मानते हैं, वो इतने में आपने को समर्थवान मानते हैं कि मैं बेटा को बेटी को खूब पढ़ा दिया, हाँ अब MTech करा दिया या MSc जो भी करा दिया, PhD करा दिया, अब नौकरी के लिए बिल्कुल पक्का हो गया, नौकरी मिल गया तो मानते हैं कि नौकर बन गया मेरा बेटा, नौकरानी बन गई मेरा बेटी, मैं कृतार्थ हो गया। ऋषभदेव कहते हैं बताओ ये मूढ़ों को, अरे कोई व्यक्ति आप देख रहे हैं अंधा की तरह उल्टी दिशा में जा रहे, वो गड्ढा है मरेगा, आप देख रहे हैं उन विचारों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो गड्ढे की ओर जा रहा है मरने के लिए, आप जब समझदार देखें आपको देख पड़ रहा है तो क्या कर्तव्य होना चाहिए, रोकना चाहिए भैया, यहां मत जा, पकड़ कर हाथ यहां ले लेना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे ही है, वो गड्ढा की ओर जा रहे, उसको यहां धकेल दिया, जा मर, ये कोई कर्तव्य होता नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे अविद्या अज्ञान के कारण माया से फंस करके जीव ऐसे तो आपने इंद्रिय सुख को स्वार्थ को सब कुछ मान करके जीवन के उद्देश्य अर्थ परमार्थ सब भूल गए, आत्मा को विस्मृत हो चुके हैं, आत्मज्ञान का बिल्कुल ढके हुए हैं, और केवल इंद्रिय तृप्ति और इसी को परमार्थ स्वार्थ मान करके उसी के रास्ता पर बढ़े हैं, वो जो तथा तथा कथित उन्हें अभिभावक उनको बढ़ाते हैं, हाँ बढ़िया है, और बढ़ो, ये नहीं होना चाहिए। वास्तविक दक्ष प्रजापति कम से कम भले प्रजा उत्पन्न करने में एक्सपर्टिस थे, लेकिन पता था कि पुत्रों को इस गृहस्थाश्रम में जाने से पहले ये तपस्या करके अपने को समर्थ बनाना चाहिए, यह आवश्यकता था, समझना था। इतना ही आत्मज्ञान भगवत ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद में इट इज अप टू देम। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक कर्तव्यनिष्ठ पिता को ये होना चाहिए कि पुत्र के ऊपर स्वाधीनता दे, पहले तो उनको अच्छे ट्रेनिंग में दे, वो ट्रेनिंग पा करके अच्छे गुरु के तत्वोपदेश को समझ करके वो अपने आप डिसाइड करे मैं ये आश्रम में जाऊं या ये आश्रम में जाऊं, उनके ऊपर छोड़ दे। अगर वो रिस्क उठाना चाहते हैं उठाए, है ना, नहीं बड़े बड़े महापुरुष भी गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन वो कैसे रहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार रहते हैं कि रहते हुए केवल पारिवारिक जीवन निर्वाह करने के लिए, संसार की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति करने के लिए मात्र गृहस्थ आश्रम रहते हैं, नहीं तो उनका वास्तविक मन बुद्धि हृदय भगवत चरण में लगा हुआ है। ये संसार में पति पुत्र में बिल्कुल नहीं लगते, अनासक्त है, केवल आसक्ति के ड्रामा दिखाते हैं कि मेरे संबंधी ये है, क्योंकि ये ड्यूटी बाउंड है, बाहरी कर्तव्य निभाने के लिए ये केवल ये शरीर धर्म, ये संसार धर्म को निभाने के लिए मात्र से इतना ही करते हैं, लेकिन वास्तविक परमार्थ जो है उसको लक्ष्य करके वो चलते हैं। यही होना चाहिए आदर्श गृहस्थों का, लेकिन ना कि अब स्वयं नरक के लिए रिजर्वेशन किए हैं और सबको लेकर चलो हमारे साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए। वास्तविक जीवन के लक्ष्य, जो भागवत आदि शास्त्र को नहीं पढ़े हैं, तो जो केवल इस नट बोल्ट के बारे में पढ़े हैं और केवल दो पैसा कमाने का जो जानते हैं, उसी को विद्या मानते हैं, वो इसी बड़ा गर्वित होते हैं, उन विचारों के बड़ा दुरावस्था है। उनको देख करके दया होना चाहिए, हाँ, कि क्या उनके दशा, अच्छे खासे लड़के ये कैसे जा रहे हैं अंधाधुन, वही नट बोल्ट के टेक्निक पढ़ करके वो बोलते हैं कि हम परमार्थ को प्राप्त कर जाएंगे। अरे कोरा अज्ञान है, इस बात को उनको बारंबार समझाना चाहिए। और जो ना समझ है, इतने समझाने पर भी इतने ग्रस्त है, आसक्त है विषय भोग में, जो समझ में नहीं पाए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए और भी दया होना चाहिए, कितने इनग्रस्त है, कैसे भी तरह और उपाय करना चाहिए समझाने के लिए, कैसे समझ जाएं ये महा दुर्बुद्धि अज्ञान को कैसे दूर करें, इस प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनको धकेल देना चाहिए गड्ढे में, नहीं, नाना प्रकार के उपाय से दे करके यही कर्तव्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन था, सार्वभौम भट्टाचार्य एक समर्थ गृहस्थ थे, उन्होंने जब समझ पाए तो उन्होंने स्तुति में, आपने स्तुति में कहे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुषम पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां वदेहं तमहं। इसी चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था, वो दो ही मेन एजेंडा बताते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य की शिक्षा देना और भक्ति योग की शिक्षा देना, ये उनका प्रोजेक्ट था। और उसको हम भूल गए, भगवान आए थे हम लोग के कल्याण करने के लिए आए थे, और हम उसको नहीं समझते हैं, उस ज्ञान को छोड़ करके ये तथा कथित विषय भोग ज्ञान में फंस करके अपने आप को कर्मान्वित मानते हैं, ये परम मूर्खता की परिचय है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है जिनको, वो भले ऐसा कहे लेकिन उनको ज्ञान देना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ पाते हैं, उनको अगर तरीका से समझा जाए वो समझते हैं। नारद जी जैसे शिक्षक मिल जाए, वो तो उनका रिकॉर्ड है, शिकारी मृगारी और दस्यु रत्नाकर उनको भी उद्धार कर डाले हैं, है ना, नहीं तो उनके पदचिन्ह पर चलने वाले जैसे आचार्य प्रभुपाद जी जैसे हैं, जैसे हैं वो भी वो सेट को सेट स्टूडेंट को उठाते हैं और लगाते हैं काम। तो यही कर्तव्य होना चाहिए जैसे नारद जी ने किए, और भले माता पिता झगड़ा करे केस करे, बोले ब्रेन वॉशिंग हो रहा है, ब्रेन वॉशिंग तो करना अच्छा ही तो है, वॉश करना खराब थोड़ी होता है, ब्रेन को कोई वॉश कर दे, चित्ते कोई को वॉश कर दे, इट्स गुड, गंदे रहना तो अच्छा नहीं है, लेकिन इतने आसक्त हैं विषय भोग में उसको समझ नहीं पाते, माया से इतने ग्रस्त हैं उनको समझ नहीं पाते। क्यों भगवान आते हैं बार बार, क्या चाहते हैं, हमारा इस देह का क्या आवश्यकता है? मैं कभी कभी पूछता हूँ, भाई वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप सभी अपने मन में सोच सकते हैं। देखिए, इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, छोटे से बड़े तक कोई भी वस्तु, उसका मैन्युफैक्चर होने से पहले, उसका बनावटी होने से पहले उसका उपयोगिता के बारे में पहले डिस्कस किया जाता है। उसका क्या उपयोग है, एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, वो बनने से पहले इस वस्तु का क्या उपयोगिता है, ये पहले डिसाइड किया जाता है और उसी के अनुसार उसको बनाते हैं, डिजाइन होता है। तो मैं ये पूछता हूं, हम सभी अपने आप को पूछना चाहिए कि ये जो वस्तु, ये जो हम प्रोडक्ट हम लोग निकले हुए हैं, दो हाथ दो पैर इस आर्डर इस प्रकार से, इस प्रोडक्ट का व्हाट इज, क्या उपयोगिता है, किसी लिए ये प्रोड्यूस किया गया? ये जितने हम बैठे हैं, जो नहीं बैठे छोड़ो, सब आपने आपको पूछिए कि मेरा वास्तविक उपयोगिता क्या है। अगर उसकी न्यूज उसको नहीं जान पाते हैं तो करते क्या हम, वेस्ट ऑफ टाइम। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे पहले जिज्ञासा होना ही चाहिए, मेरा यूज क्या है, मैं खुद आया क्या या किसी ने मुझे भेजा है? अगर मैं खुद भी आया या किसी ने मुझे भेजा, ये तो निश्चित बात है कि मैं दुखी नहीं होना चाहता हूं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, है ना? नहीं, दुनिया में सब इसी को महास्वार्थ मानते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन अभी तक जितने सुखी होने का प्रयास तूने किया, वो हाथ में आया सुख नहीं, नहीं है। तो इसी के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी के सामने जब श्री महाप्रभु भगवान आए तो उनको ही प्रश्न पूछे, बोले भले संसारी लोग दुनिया मुझे बोलते हैं कि रे राजमंत्री सनातन महापंडित, और मैं भी मानता हूं उनको, यस मैं पंडित हूं महामंत्री हूं, लेकिन प्रभु सच बताऊं, अनेस्टली सच बताता हूं कि के आमी, मैं कौन हूं ये भी नहीं जानता हूं, नहीं पता है मुझे के आमी, के न आमाय जारे तापत्रय, ये तीन प्रकार के क्लेश मुझे क्यों प्राप्त होता है इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, और उससे बढ़कर की बात है, यहां नहीं जानी आमी केमन हित है, मेरा कैसे कल्याण होगा, वास्तविक हित कैसे होगा ये भी मुझे पता नहीं है, और दुनिया में दिखाता हूं हमें एमए पीएचडी डिलीट प्रोफेसर, अरे गोबर गणेश कहीं के, ये कैसे, जब आपने को पता ही नहीं तेरा हित कैसे होता है, क्यों दुख भोगता है, तो क्या ज्ञान है तेरा पास? तो वो जिज्ञासा के, यही जिज्ञासा होना चाहिए हम सभी के मन में, यही जिज्ञासा जब तक नहीं हुआ तब ज्ञान के उदय ही नहीं हुआ, ज्ञान तक गए ही नहीं हम लोग, ऐसे फंसे हुए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ऐसे दुर्दशाग्रस्त हम लोग को दशा देख करके, अब देखे कि कोई संत समाज भी हाथ उठा दिए, हो नहीं रहे, मान नहीं रहे, इतने टेक्निकली आदि आदि रूप में एडवांस करके कोई मान नहीं रहे, माता पिता भी अपने बेटा बेटियों को थोड़े तथाकथित पढ़ा करके नौकर नौकरानी बना कर बोलते हैं, वाह वी आर सो सक्सेसफुल, भले वो उनको शादी करके घर से निकाल देते, ओल्ड एज होम में भेजते हैं, लेकिन फिर भी रो रो कर यही बोलते हैं कि मेरे जीवन में तो इतनी बड़ी सफलता प्राप्त किया, अभी मुझे दुख भोगना पड़ता है, यहाँ चक्की पीसना पड़ता है, लेकिन क्या सफलता प्राप्त किया, ना मेरे बेटा बेटी को नौकर नौकरानी बना पाया। अरे गधे, वो भी तेरे जैसा ही भोगेंगे, चक्की पीसेंगे बड़े हो, क्योंकि उनको असली ज्ञान तो दिया तो है ही नहीं। यहां असली ज्ञान के बताया गया, जिस ज्ञान के द्वारा इस मृत्यु के फांस से बच सके, इस जन्म मृत्यु का चक्र से अपने को बचा सके, क्यों ऐसे क्लेश भोगते हैं, ऐसे कष्ट पाते हैं, उसको जान सके, उसके उपाय नहीं करते हैं, तो ये कोई उनको सहायता किया तूने, नहीं दिया, और आप लोगों को बड़ा समझते हैं करके, नहीं, किसी भी प्रकार से जेन तेन प्रकारेण, शास्त्र ही कहता है कि सारे सार वस्तु वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा जोगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव पराम गतिम, सब कुछ धर्म कर्म वेद की शिक्षा जप तप सब परम गति ही वास्तव भगवान ही है। तो अगर भगवत ज्ञान नहीं मिला तो असार है जीवन। क्या मतलब है? जो इस भगवत ज्ञान नहीं दे पाया और भली प्रकार से पढ़ाया लिखाया, ये सारे बेकार। हमारे प्रतिष्ठा इस संस्था के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद उन्होंने कहा करते थे, मैं बड़े कृतार्थ हूं, बड़े अपने को गौरव मानते, मैं ऐसे पिता प्राप्त किया था, मेरे पिता ने बचपन से मुझे भक्त बनाने का प्रोजेक्ट लिए थे, मेरे लिए ऐसे किया, मुझे मृदंग सिखाए, हारमोनियम सिखाए, वैष्णव भजन सिखाए, और बोलते थे बोले बेटा मैं चाहता हूं कि तू एक अच्छे भक्त बन, राधा जी के भक्त बन। लेकिन उनकी माँ चाहती थी बड़े अफसर बने, लेकिन पिताजी की यही इच्छा था, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते मेरे पिताजी के इस सदिच्छा के कारण मैं आज इसे बन पाया। वो माता पिता आदर्श माता पिता के ही कर्तव्य होना चाहिए कि आपने बेटा बेटियों को कम से कम के अच्छे भक्त बनाने के लिए तालीम दे, छोटे उम्र से बचपन से उनको शिक्षा दे, कम से कम वो भक्ति का सारे शिक्षा दे दे, बाकी भाड़ में आगे जाए क्या हो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा कर्तव्य पूरा होना चाहिए, भक्ति की पूरा शिक्षा दे देना चाहिए उनको, और उसके ऊपर उनका कर्म दोष। लेकिन सही समय में सही शिक्षा अगर नहीं दिए तो हम दोषी हैं। तो इसलिए यहां कहा गया कि दक्ष प्रजापति ने अपने दूसरे सेठ को, दूसरे टोली, दूसरे सेठ के पुत्रों को यद्यपि चाहते थे गृहस्थ बने, लेकिन वो ही मार्ग में भेजे जहां उनके भाइयों ने, पूर्वजों ने सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, उनका एड्रेस ही नहीं मिल रहा, वही जगह पर फिर भेजे। और जानते थे कि नारद जी यहां फिर आ सकता था, और आए भी, नारद जी फिर आए और वही किए, दूसरा सेठ भी गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हल्ला गुला नहीं किए। और नारद जी के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ, नारद जी बोले चलेगा, हम इसके लिए रेडी हैं। तो यही होना चाहिए। नारद मुनि जैसे महाअधिकारी व्यक्ति, वो जानते थे भले माता पिता थोड़ा दुखी हो जाएं, अब मुझे गाली देकर अभिशाप दे दें, कुछ भी दे दें, वो चलेगा, लेकिन इतने लोगों को तो उद्धार हो गया। श्री यहां नारायण सरोवर में जाकर के ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते होंगे वो लोग। इस मंत्र को याद करके मेरे याद आता है श्री रामानुजाचार्य, उनके जीवनी में प्राप्त होता है कि उन्होंने जब दीक्षा आदि प्राप्त किए, मंत्र दीक्षा को जो प्राप्त करना, मंत्रार्थ प्राप्त करना चाहते थे, तो उनको फिर भेजा गया कि उनके पास जाओ, वही जानते हैं। तो उनका पास जाकर रिक्वेस्ट किए, मुझे ये सेकंड इनिशिएशन दे दीजिए। उन्होंने बोले नहीं, अभी तो डिस्क्वालिफाइड है, अब भेजे जाओ दोबारा। 18 बार उनको भेजे, यहां तक भगवान रंगनाथ स्वप्न में आकर बोले अरे ये मेरा कैंडिडेट है, आई एम रिकमेंडिंग, उसको दे दो। भगवान का रिकमेंडेशन को वो गुरुजी नहीं माना, बोला मैं कैसे दे दूं, मैं पक्का हूं, गड़बड़ ना कर दे, कहीं हल्ला गुल्ला कर दे जा करके। भगवान का रिकमेंड के बाद भी नहीं मानते थे, इतने स्ट्रिक्ट था वो ब्राह्मण गोष्ठी पूर्णा। तो उन्होंने इतने परीक्षा, इतने चेक करने के बाद में 18 बार रुला रुला करके रामानुजाचार्य आत्महत्या करने पर जंत तैयार हो गए, तब बुला करके उनको सेकंड इनिशिएशन दिया, और दे करके बता देखो मैं इतने आपको सताया, इतने किया, देखो ये इतने सीक्रेट मंत्र, टफ सीक्रेट, उसको मैं आपको बताता हूँ, किसी को नहीं पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल अति गुप्त मंत्र तेरे कान में बताता हूँ, किसी को नहीं बताना चाहिए। क्यों? रामानुजाचार्य बोले क्यों गुरु जी? क्योंकि इस मंत्र को कोई सुन ले, कोई इसको उच्चारण कर ले, सीधा वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा उनका, इसलिए भी क्या इतने टफ सीक्रेट गुप्त मंत्र है, इतने महात्म्य है इस मंत्र का, उसको बड़े समझा करके मंत्र महात्म्य वो दे करके छोड़े। और रामानुजा उनके घर से, गुरु के द्वार से निकले, सारे आए जो बड़े मंदिर था, उस दिन पूर्णिमा था, बड़े भीड़ आया था, तभी जमाने साउंड सिस्टम तो था नहीं, तो सीधा मंदिर के अंदर ठाकुर जी के पास न जा करके मंदिर के चक्र तक चढ़ गए, मंदिर के ऊपर में छत में चढ़ गए, छत में चढ़ करके इशारा हुआ करके बोले आप लोग सब भगवान को दर्शन में आए, क्या आप सब भगवत धाम जाना चाहते हैं? आज ही आपको भगवत धाम से पहुंचा दूंगा। कौन नहीं चाहेगा भैया, ऐसे ऑफर किसी को मिले कौन नहीं चाहेगा? सब बोले हाँ। तब बोले मेरे पीछे सब आना सब मेरे पीछे पीछे बोलो, और बड़े आवाज से बोले ओम नमो नारायण आय, सबको उच्चारण कराए। अरे ये खबर सब उच्चारण के लोग जहां कृष्णपूर्ण भवन घर पहुंचा, ये तो क्रोध में पंच होकर के आए, पंचम स्थिति पर आकर बोले ये इतने परेशान किया, इतने समझाया, इतने समझा कर गुड़ इतने समझाया, वो क्या किया सब मिट्टी में मिला दिया, शिक्षा को जाकर वह मंदिर के छात में जाकर हल्ला करके बोलता है। इतने गुस्से होकर आए आकर के भीड़ में बोले रामानुज चिल्ला, इसलिए क्रोध अग्नि था, अंगार की तरह आंख जल रहा था। रामानुज तो ऑलरेडी सबको हल्ला कर चुके थे, सारे लोग मंत्र जप कर रहे थे, वो थर थर कांप रहे थे क्रोध में। रामानुज उत्तर के गुरु जी साष्टांग प्रणाम की, बोले तुझे पता है तो क्या किया, क्या गति होगा? रामानुज बोले गुरु जी पता तो है, मैं अनंत काल तक नरक निवास करूंगा। बोले पता है तुझे? ना पता है, बोले फिर भी तूने ऐसा किया, कैसे तूने इतने किया? तुझे पता है कि तुझे नरक वास होगा इतने तक, तू फिर भी किया? बोले गुरु जी मैं भले अनंत काल तक नरक में रहूं, लेकिन इतने सारे लाखों लोग वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा ना। तो गुरु जी गोष्ठीपूर्ण का सारे क्रोध जो यहां तक था धड़ाम से आर्थिंग हो गया। बोले बाप रे बाप, इतने दया, स्वयं अनंत काल तक नरक निवास को स्वीकार करके दूसरे को वैकुंठ प्राप्ति कराने के लिए इतनी बड़ा दया उसका, ये काम किया उन्होंने। धीख है मेरा जीवन, कहा क्या मंत्र लेकर बैठा था, क्या सक्रिय ये मंत्र में, तभी उनका है। तो ऐसे ऐसे आचार्यों के भाव होना चाहिए, वो केवल वैष्णव आचार्यों के अंदर ऐसे सच्चे दया करुणा होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अगर जीव जगत में आते हैं तो आकर के सारे जीवों को यही आदेश दे देते हैं, यही फुकार करते हैं, जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कत निद्रा आ पर हम बोलेंगे कि गुरुजी हम अब बैठे हैं क्लास में, थोड़े सोए थोड़ी है, हम चार बजे से उठ चुके हैं, हम सोए नहीं है। लेकिन भगवान कहते तू सोया है, हैं सोया, हमें क्लास में बोले तू सोया, बेडरूम में भी नहीं है, चुड़ैल के गोद में सोया है, माया रूपी पिशाच के गोद में सोया है, री खतरनाक। बोले क्यों सोया है, मैं तो बैठा हूं क्लास में। बोले नहीं, केवल बैठने से नहीं होता, केवल आंख बंद कर बेड में लेटने से सोया हुआ नहीं माना जाता, वो जगते हुए चलते हुए भी सोया हुआ माना जाता। बोले क्यों? बोले असली जागृत और सुप्त का जो अंतर है वो क्या है, केवल लेट कर आंख बंद करने से सोना और बैठ करके आंख खोल देने से जागृत ये नहीं माना जाता। बोले जागृत के प्रमाण तभी होगा, प्रमाण होगा कि जागृत है, कि जागने के बाद जो कर्म करना चाहिए अगर ऐसा क्रिया में तू नियुक्त हो तो माना जाए तू जगे हुए हो, अगर क्रिया किया ही नहीं आंख खोलकर बैठने से क्या मतलब है। आंख खुलकर भी सोते हैं कोई, कई लोग, मछली कभी आंख बंद नहीं करता, वो सोता है ऐसे, घोड़े खड़े खड़े सोता है, तो मतलब क्या है कि वो लेटने से नहीं, नहीं असली जागृत अवस्था में जो कर्म करना चाहिए तुझे वो कर्म तूने नहीं किया तो अभी तक सोया हुआ है, जगते हुए भी सोया हुआ है। वो क्या कर्म है जिसको करने से मुझे जगा हुआ माना जाएगा, क्या कर्म है? भजी बबोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजी बबोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे, भले तूने भूल गया इस संसार में आने से पहले मां के गर्भ से जब था, जब बाहर नहीं निकला था, कितने बार कसम खाया था तुझे पता है? कितने बार कसम खाया था, कान नाक पकड़ कर रगड़ रगड़ कर बोला था प्रभु प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम, कसम खाता हूं,
आते ही तुम्हारा भजन करूंगा प्रभु, पक्का बात है, इस बार निकाल दीजिए। निकलते ही भूल गया, भूल गया संसार में संबंधियों में विषय में भोग में फंस करके भूल गया, अविद्या के ग्रस्त हो गया और असली टारगेट को भूल गया। अब क्या करूं, माया पिशाची से कैसे बचूं, कोई उपाय है? बोले तू तो इसी बुरी तरह से फंसा है, तू निकल ही नहीं सकता, तो मैं आया तुझे बचाने के लिए, तुम हो कौन?
तुम्हारे लईते हमी हैनु अवतार, तुम्हारे आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, आमी बिना भले मैं आया तुझे लेने के लिए, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, तू हेल्प तो पूछा भी नहीं, लेकिन मैं देख कर के तू गड्ढे में जा रहा है, तुझे मदद करने के लिए आया। तुम कौन हो, मुझे क्यों मदद करना आया? कि मैं तेरा फ्रेंड हूं, अभी तक दुनिया में तेरे जितने बंधु बांधव है सब स्वार्थे पर निहित है, स्वार्थ आधारित है, मैं ही केवल निस्वार्थ तुम्हारे बंधु हूं, मेरा अलावा कौन तुम्हारे बंधु है? जो वास्तविक तुम्हारा हित चाहता है ऐसा कोई नहीं मेरे अलावा, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार। लेकिन अच्छा, आप ऐसे बंधु है, वास्तविक हित चाहते ना, कैसे मुझे करेंगे आप बंधुता मेंटेन, कैसे करेंगे, क्या है उपाय आप पास?
एनी छी औषधि माया नासी बार लागी, एनी छी औषधि माया नासी बार लागी, एई हरि नाम मंत्र लय तुमी मागी, हरि
बोले मैं मेडिसिन लेकर आया हूं, तो पर्ची दिया के पर्ची लेकर आया, नहीं 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 ये मेडिसिन मिलेगा नहीं यार, बाजार में मिलेगा नहीं, मैं खुद लेकर आया हूं होम डिलीवरी देने के लिए तुझे, यहीं पर दूंगा। अच्छा दवाई बहुत खाया हुआ, कड़वा कस्सा सिरप टैबलेट पता नहीं इंजेक्शन आदि तो नहीं है? अरे कुछ नहीं है, वो ऐसा मेडिसिन नहीं है कि तुझे कटु लगेगा कसाय लगेगा तीता लगेगा, ऐसे कुछ नहीं है, वो दवाई के ऐसा है, कोई सिरप कोई टैबलेट कोई मलम कुछ नहीं है, कुछ चूर्ण भी नहीं है, क्या है? हरि नाम मंत्र, ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा इस हरि नाम महामंत्र को मैं लेकर आया हूं, ये अचूक दवा है, इस दवा को लेने के लिए कोई कड़वा कसा कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है, केवल उसको उच्चारण करो और सुनो, इस दवाई को लेते रहो, इस दवाई के इफेक्ट क्या ना, माया नाश हो जाएगा, माया नाश, ये माया नाशक बहुषधि है ये महामंत्र, उसके द्वारा माया नाश हो जाएगा, धीरे धीरे तू जग जाएगा, तू जागृत हो जाएगा, पता चलेगा मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करना चाहिए, वही काम फिर तू करेगा। क्या मेरा कर्तव्य है? ना एकमात्र अर्जुन को इसीलिए भगवान ने कहे, अर्जुन
अनित्यम असुखम लोकम, ये लोक जिसमें तू आ गया ना ये टेम्पररी है, अनित्य है, सुख तो है ही नहीं वहां, तू कहां मिलेगा? वो बड़बक सुख ढूंढ रहा है, सुखी होना चाहता है, सुख है ही नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, अगर तू यहां किसी उपाय प्रकार से प्राप्त यहां आ गया तो व्हाट शुड बी द ड्यूटी नाउ, अब मैं करूं क्या? आ तो गया इस जगह पर, अनित्य असुख संसार में आ गया, कर्तव्य क्या है मेरा? एक ही कर्तव्य, ओनली वन ड्यूटी, वन क्वेश्चन। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, केवल मेरा भजन करना ही एकमात्र कर्तव्य है। जो वही काम करता है उसी को जागृत माना जाएगा, जो वो नहीं करता सोए हुए हैं, बेड में भी नहीं माया के गोद में सोए हुए हैं। तो इसलिए भगवान भी हमको जगाना चाहते हैं, गुरु आचार्य गण भी जगाना चाहते हैं, शास्त्र भी उनको ही उपदेश देता है। इतने सब सुन करके समझ करके जान करके फिर भी हम नहीं करते हैं, हमारे जैसे बेवकूफ फिर कौन हो सकता? तो इसलिए नारद जी तभी जमाना से यही काम करते आए हैं, उनके पदचिन्ह में चलते हुए उनके अनुजाई गण भी वही काम आज भी करते रहते हैं, आज भी करते रहते हैं। भले उनको कितने गाली मिले, कितने क्रिटिसाइज करना मिले, कितने दिक्कत हुए, कुछ हुए, लेकिन वो तो नारद जी के फॉलोअर है, वो सहन कर लेते, बोले अभी सब दे दो चलेगा, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, तुम अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। वो करते ही रहते हैं, वो करते ही रहते हैं, है ना? नहीं तो ही हमारा कर्तव्य है, और जो इस बात को जानते हैं वो दूसरे को भी इस बात को बताना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? क्योंकि मुझे बोला गया था कि कुछ समय पहले 9 बजे से पहले छोड़ने के लिए कुछ यहाँ मीटिंग है, मुझे सूचित किया गया कुछ ब्रह्मचारी मीटिंग है ऐसा कुछ है इस स्थान पर। यस, नहीं वो दक्षा को भी पता था कि रिस्क है, वापस नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं। पहले सेठ जब चला गया वो आएंगे कर क्या गारंटी था उनके पास? दक्षा थे इसलिए तो क्या उनका दक्षता कहाँ रहा? आजकल के माता पिता भी वही रिस्क लेते हैं, जो जो भेजते हैं वो भी चाहते हैं, पता नहीं आएगा कि चला जाएगा, क्या पता। लेकिन होना चाहिए, भले उनको थोड़ा खराब लगे, उनको अगर सही रास्ता पर, यही तो मैं कहता हूँ, उन्होंने शराब पियेंगे, गलत संग करेंगे, बोले अड़भान सिंह मेरा बेटा ठीक ठाक कर रहा है, और अच्छे सद विचार में सद खाना पीना खा करके प्रसाद खा कर रहेगा, भगवान के पास जाएगा, बोले ये क्या करे गड़बड़ है, ये दुर्बुद्धि है ना? नहीं, ये सब के ये होने का कारण है कि कोई भागवती शिक्षा नहीं है, भागवत आदि पढ़ते नहीं, ज्ञान नहीं है, तो इसलिए समझ में नहीं आता ये सब चीज। और जो तथा कथित भागवत आदि सब करते हैं इस बात को ठोस क्योंकि बताते नहीं है, गांव में करके सब चले जाते हैं, नाम ऐसे होता है, कुछ जाते नहीं, इस प्रकार कोई उनको बताते भी नहीं, वो समझते भी नहीं, ये दशा है। तो इसलिए आप जैसे प्रचारों का धर्म होना चाहिए, बाकायदे इसे नारद जी के अनुयायी बनना चाहिए, काम करना चाहिए। हरे कृष्ण।